रहमान रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज।
रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, आज आप कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 32, 33 और 34 की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे ईरान के प्रख्यात कारी अबुल कासिमी से।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
الله کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر کی پتنیوں، تم سامان محلاؤں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، یدی تم اللہ کا ڈر رکھو تو کسی ویکتی سے کومل سور میں بات نہ کرو کہ وہ ویکتی جس کے من میں روگ ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور سدیو بھلی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور پچھلے اگیانتا کے کال کی بھانتی بن ٹھن کر باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا آگیا پالن کرو۔ ہے پیغمبر کے پریجنوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس پرکار کا پوتر رکھے جس پرکار پوتر رہنے کا حق ہے۔ اور ہے پیغمبر کی پتنیوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور تتو درشتا کی جن باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو کہ نشچے ہی اللہ اتینت سوکشم درشی اور خبر رکھنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، سبھا میں آپ کا سواگت ہے۔ آج شنیوار ہے، مئی کی 14، شوال کی 12 اور اردی بہشت ماہ کی 24 تاریخ۔ کارکرم میں آپ پہلے سماچار سنیں گے، پھر راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت ایران بھرمڑ نامک ساپتاہک کارکرم آپ سنیں گے۔ سبھا کے انت میں ہم آپ کو سنوائیں گے ایک انیہ ساپتاہک کارکرم اجول بھوش۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ ہمارے ان کارکرموں کو آپ اپنی سویدھا کے انوسار ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، parstoday.com/hi۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ مریم مہر دادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ نیتنیاہو نے امریکہ سے ایران پر حملہ کرنے کا انورودھ کیا تھا۔ سیریا پر اسرائیل کے ہوائی حملے میں 5 لوگ مارے گئے۔ یورپ اب روس کی مانگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ بھارت نے گیہوں کے نریات پر روک لگا دی ہے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
پورو امریکی رکشا منتری کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو نے ٹرمپ سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ امریکہ کے پورو رکشا منتری مارک ایسپر نے اپنی کتاب میں یہ رہسیہ ادگھاٹن کیا ہے کہ اسرائیل کے پورو پردھان منتری نیتنیاہو نے ڈونالڈ ٹرمپ سے ایران پر حملہ کرنے کا انورودھ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا، لیکن پورو امریکی راشٹرپتی اسلامی گڑتنتر کے خلاف یدھ چھیڑنے کا ساہس ہی نہیں کر سکے۔ ایسپر نے اپنی نئی کتاب میں یہ رہسیہ ادگھاٹن کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتنیاہو نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے ٹرمپ کو اکسایا بھی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے وشواس تھا کہ جب نیتنیاہو مجھ سے ملیں گے تو یہی بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات میں بھی یہی کہا تھا۔ ایسپر نے آگے لکھا ہے کہ میرے وچار میں یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، خاص کر اس سمے جب کوئی قدم اٹھانے کے لیے زبردستی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔
شکرار رات سیریا کے ہما پرانت میں اسرائیلی وایو سینا کے ہوائی حملے میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ہما کے مسیب علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی لڑاکو ویمانوں سے داغے گئے ادھکانش میزائلوں کو سیریائی وایو رکشا پرنالی نے ہوا میں ہی نشٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود حملے میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور 7 انیہ گھائل ہو گئے۔ برٹن استھت سیریائی مانو ادھیکار سنگٹھن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے مسیف پر کم سے کم 8 میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں کئی جگہ آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس سال کی شروعات سے اب تک سیریا پر یہ اسرائیل کا 12واں حملہ تھا۔ सीरिया और इसराइल 1967 से युद्ध की स्थिति में हैं, जब ज़ायोनी शासन ने सीरियाई इलाके गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था।
हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख ने यह कहा है कि अब तलवार पर खून की फतह का वक्त आन पहुंचा है। हमास के नेता ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से ओस्लो समझौते और सुरक्षा सहयोग को समाप्त करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि समस्त फिलिस्तीनियों को एकजुट होकर ज़ायोनी शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौरतलब है कि 11 मई को इसराइली सैनिकों ने अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक स्थित जनीन शरणार्थी कैंप में रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा टीवी चैनल की सीनियर पत्रकार शीरीन अबू अकलेह को शहीद कर देने के बाद शुक्रवार 14 मई को एक फिलिस्तीनी युवक को गोली मारकर शहीद कर दिया। उल्लेखनीय है कि 1993 में इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पीएलओ नेता यासिर अरफात ने वाशिंगटन में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को औपचारिकता प्रदान की थी।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की 20 कंपनियों ने रूस से गैस की आपूर्ति के लिए मॉस्को की शर्तों को मानते हुए गैसप्रोम बैंक में रूबल में भुगतान के लिए खाता खोल लिया है। ब्लूमबर्ग ने रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी गैसप्रोम के एक निकट सूत्र के हवाले से बताया है कि अब तक यूरोप की 20 कंपनियां गैसप्रोम बैंक में अकाउंट खोल चुकी हैं। गौरतलब है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए थे, जिसके बाद रूस ने गैर मित्र देशों को गैस और तेल की आपूर्ति के भुगतान के लिए खाता खुलवाने की शर्त रखी थी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में यूरोपीय देशों ने इस शर्त को ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया था कि इससे रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, लेकिन ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए और रूसी ऊर्जा का विकल्प तलाश न कर पाने के कारण यूरोपीय देश मॉस्को की मांगों के सामने झुकने लगे हैं। यूरोपीय देशों ने वर्ष 2019 में कुल प्राकृतिक गैस आयात में से 41% रूस से ही आयात की थी।
तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध करेगा। इस्तांबुल में पत्रकारों से बात करते हुए अर्दोगान ने कहा है कि इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने के अनुरोध को वो एक सकारात्मक कदम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये देश आतंकवादियों के लिए गेस्ट हाउस बने हुए हैं। तुर्की की ओर से स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध इनके रास्ते में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि 30 सदस्य वाले इस सैन्य संगठन में किसी भी नए देश की सदस्यता के लिए सभी सदस्यों की सहमति बहुत ज़रूरी है। अर्दोगान का ये भी कहना था कि नाटो में ग्रीस को शामिल करना भी एक गलती थी, जिसके साथ कई मुद्दों पर उसका विवाद चल रहा है। तुर्की 1952 में नाटो में शामिल हुआ था। इससे पहले गुरुवार को फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके देश को बिना किसी देरी के नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए।
अमेरिका अपने 10,500 सैनिकों को यूरोप भेजने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिम की ओर से रूस पर अपना दबाव बढ़ाने के बीच पेंटागन के प्रवक्ता ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के लिए अपने 10,500 सैनिकों को भेज रहा है। फार्स न्यूज के अनुसार इस प्रकार से यूरोप में तैनात अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो जाएगी। जॉन केर्बी ने संवाददाता सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की है कि वाशिंगटन अपने 10,000 सैनिकों को यूरोप भेजने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में सुरक्षा की स्थिति बहुत ही जटिल हो गई है। जिस समय यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ उस समय यूरोप में अमरीकी सैनिकों की संख्या 80,000 थी। ये अमरीकी सैनिक यूरोप में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं। पिछले महीने अमरीकी सैन्य कमान के प्रमुख ने कहा था कि मैं एक स्थायी सैन्य छावनी के पक्ष में हूं, लेकिन पर सैनिकों को स्थायी रूप में तैनात न करके उन्हें अस्थायी रूप में तैनात किया जाएगा।
रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होगी। अपने एक संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस वर्ष हमारे देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है। अनाज विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल रूस में कम से कम 130 मिलियन टन अनाज की पैदावार होगी, जिसमें गेहूं की पैदावार कम से कम 87 मिलियन टन हो सकती है। पुतिन के अनुसार 2022 में रूस के इतिहास में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड पैदावार जहां रूस के लिए ये संभावना उपलब्ध कराएगी कि वो अपनी आंतरिक जरूरत को पूरा करे, वहीं पर गेहूं का निर्यात करके अच्छी कमाई भी की जा सकती है। रूस में सन 2017 में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार हुई थी, जो 86 मिलियन टन थी। सन 2020 में वहां पर 85.9 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ था। पिछले साल ये पैदावार 76 मिलियन टन तक रही। इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि आगामी वर्षों के दौरान गेहूं की पैदावार में रूस विश्व में सबसे पहले नंबर पर रहेगा।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में आने वाली मुश्किलों के बीच भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री ने पी चिदम्बरम ने गेहूं के निर्यात पर रोक को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीद नहीं कर सकी, इसलिए उसे इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। चिदम्बरम के अनुसार देश में गेहूं का उत्पादन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। अगर गेहूं की सही खरीद हुई होती तो सरकार को इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना नहीं पड़ता। भारत के पूर्व वित्त मंत्री ने इस देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को अति चिंतनीय बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के परिणाम सबके सामने हैं और इसी कारण लोगों को महंगाई की मार झेलना पड़ रही है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस देश के वर्तमान आर्थिक संकट के पीछे अमरीका का हाथ बताया है। इमरान खान ने देश के आर्थिक संकट के बारे में वर्तमान सरकार की निष्क्रियता की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के समाधान में सरकार की निष्क्रियता इस संकट में अमरीकी हस्तक्षेप की परिचायक है। इमरान खान ने पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर अमरीकी षड्यंत्र सफल हो जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति अधिक संकटग्रस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ना तो महंगाई दूर करने के लिए कोई गंभीर प्रयास कर रही है और ना ही डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत के संबंध में वो कोई काम कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझको सत्ता से बेदखल करने में यूक्रेन युद्ध के बारे में मेरा फैसला था। इमरान खान के अनुसार यूक्रेन युद्ध के बारे में मेरी नीति वाशिंगटन को पसंद नहीं आई।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करने वाले दो सऊदी नागरिकों को इस देश में फांसी दे दी गई। अल अहद के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने कतीब के रहने वाले दो बंदियों को फांसी दे दी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आरोप में जेल में थे। मोहम्मद खजर अल अवामी और हुसैन अलेबू अब्दुल्ला को फांसी की सजा दी गई। सऊदी अरब में हर साल बहुत से सरकार विरोधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बहाने मौत की सजा दे दी जाती है।
यूएई की उच्च परिषद ने मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को इस देश का प्रमुख नियुक्त किया है। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार खलीफा बिन जायद आल नहयान के देहांत के बाद संयुक्त अरब इमारात की उच्च परिषद ने मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को इस देश का प्रमुख नियुक्त किया है। शेख आल नहयान का देहांत 73 वर्ष की आयु में शुक्रवार को हो गया था। खलीफा बिन जायद यूएई के संस्थापक के सबसे बड़े बेटे थे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद यूएई के शासक बने थे। यूएई की स्थापना के बाद से खलीफा बिन जायद इस देश के 16वें शासक बने हैं। संयुक्त राज्य अमीरात की स्थापना 2 दिसंबर सन 1971 को हुई थी। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे इसराइली सैनिकों के हाथों फिलिस्तीनी पत्रकार की शहादत के बाद जारी तनाव पर। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के हालात पर भी एक नजर डालेंगे, जहां बड़ी ताकतें आपस में भिड़ी हुई नजर आती हैं। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पर हम भारत नियंत्रित कश्मीर के हालात का भी एक जायजा पेश करेंगे, जहां गहरा तनाव नजर आ रहा है। तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं फिलिस्तीनी पत्रकार की शहादत के बाद के हालात से। अल जजीरा टीवी चैनल के लिए काम करने वाली वरिष्ठ फिलिस्तीनी पत्रकार की इसराइली सैनिकों के हाथों निर्मम हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। जायजा पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
लगातार सामने आने वाले साक्ष्यों से साबित होता जा रहा है कि इसराइल ने पूर्व योजना के तहत अल जजीरा टीवी चैनल की पत्रकार शीरीन अबू आकिला की हत्या की है। इसराइली सेना की एक जीप के भीतर से स्नाइपर द्वारा चलाई गई गोली शीरीन के सिर में उस जगह लगी जो बुलेट प्रूफ हेलमेट से छिपी हुई नहीं थी। इसका साफ मतलब ये है कि गोली जानबूझकर मारी गई थी। पेशेवर स्नाइपर के जरिए योजना के साथ ये भयानक अपराध अंजाम दिया गया है। इसराइल दरअसल शीरीन अबू आकिला से परेशान था। वे 1997 से दुनिया को इसराइल की विस्तारवादी और दमनकारी नीतियों से अवगत कराती आ रही हैं। उनकी रिपोर्टिंग बार बार विश्व जनमत की आंखों में धूल झोंकने की इसराइल की कोशिश को नाकाम बनाती रही। 1948 में कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाकों में फिलिस्तीनी युवाओं ने बार बार कामयाब हमले करके इसराइल को दहला दिया। इसके बाद से इसराइल तिलमिलाया हुआ था और वो हमास के नेता याहया सिनवार की हत्या की योजना बना रहा था, जिन्होंने फिलिस्तीनी हमलावरों के हौसले बढ़ाए थे। मगर इसराइल को डर था कि अगर सिनवार की हत्या की तो हमास और अन्य फिलिस्तीनी संगठनों की ओर से भीषण हमले शुरू हो सकते हैं, इसलिए इसराइल धमकी देने के बाद पीछे हट गया। पत्रकार शीरीन अबू आकिला के अंतिम संस्कार में फिलिस्तीनियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे लोगों को फिलिस्तीनी नेता यासिर अरफात का अंतिम संस्कार याद आ गया। इस स्थिति को देखकर इसराइल को लगा कि उसके लिए हालात खतरनाक हो रहे हैं। फिलिस्तीनियों का अंदाज देखकर इसराइलियों को यकीन है कि पत्रकार की हत्या का बदला फिलिस्तीनी जरूर लेंगे और इस घटना ने इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की एकता को और भी मजबूत कर दिया है। इस घटना से विश्व स्तर पर भी इसराइल पर दबाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका और ब्रिटेन से रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें हैं कि इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में घसीटा जाए। बेशक इसराइल के हाथों पत्रकार की निर्मम हत्या की विश्व स्तर पर आलोचनाएं की जा रही हैं, मगर इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आलोचनाएं इसराइल के जघन्य अपराध को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अगर इसी प्रकार की घटना यूक्रेन में हुई होती और वहां पश्चिमी देश का कोई पत्रकार रूसी सैनिकों के हाथों मारा गया होता तो अब तक पश्चिमी देशों ने आसमान सिर पर उठा लिया होता, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाने की मांग होती और हफ्तों यही खबर मीडिया की हेडलाइन बनी रहती। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बैठकों में कई मिनट का मौन रखा जाता, मगर शीरीन अबू अकेला के मामले में पश्चिमी देशों में इस पैमाने की प्रतिक्रिया नजर नहीं आती। फिलिस्तीनी पत्रकार का शव बैतुल मुकद्दस के शेख जर्रा इलाके में दफन किया गया। ये वही जगह है जहां से इंतिफाजा आंदोलन शुरू हुआ था। निश्चित रूप से शीरीन अबू अकेला की हत्या की घटना फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध को और भी मजबूत करेगी।
यूक्रेन में अमेरिका की जैविक हथियारों की संदिग्ध प्रयोगशाला के बारे में रूस के दावे को लेकर पश्चिमी शक्तियों और रूस के बीच टकराव देखने में आया। कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अख्तर अब्बास।
मॉस्को के आह्वान पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। रूस के राजदूत ने कहा, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने नए साक्ष्य पेश किए हैं कि अमेरिका यूक्रेन में रूस की सीमा के करीब प्रयोगशाला में वायरस पर रिसर्च कर रहा है जो महामारी का कारण बन सकता है। यूक्रेन के अधिकारी खुद अपने लोगों पर भी इस वायरस का परीक्षण कर रहे हैं जिनमें बीमारी फैलाने की क्षमता है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा है कि रूस गलत जानकारियां दे रहा है, इस खबर में सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की निरस्त्रीकरण संस्था के प्रतिनिधि ने भी वर्चुअल रूप से मीटिंग में हिस्सा लिया और अपनी अनभिज्ञता जताई। चीन ने अपनी पुरानी शैली पर चलते हुए रूस का समर्थन किया। अलबत्ता चीन को अमेरिका से बड़ी शिकायत है क्योंकि उसने कोरोना वायरस का नाम चीनी वायरस रख दिया था। चीन ने कहा कि रूस के पास उसकी चिंताओं के संबंध में कुछ साक्ष्य हैं जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए, कम से कम इस बारे में जांच जरूर की जाए। सुरक्षा परिषद का मंच जंग का मैदान बना हुआ है। एक देश हमला करता है, कई जवाब देते हैं, किसी का बयान आता है तो दूसरे का जवाबी बयान आता है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए हैं। इस बीच अनेक राजनीतिक दलों ने हिंसा की आलोचना की है। श्रीनगर से ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
श्रीनगर के निकटवर्ती क्षेत्र चारडोरा में पेश आई घटना जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों, जिसके बारे में प्रशासन का कहना है कि वो अलगाववादी छापामार थे, ने एक हिंदू राहुल भट्ट नामी व्यक्ति को गोली मारकर हताहत कर दिया, जिसके तुरंत बाद जितने भी पंडित कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इस पर जोरदार प्रदर्शन किए और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पंडितों को सुरक्षा देने में असफल रही है। सूचनाएं ये भी प्राप्त हुई हैं कि 350 के निकट उन सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद से त्याग भी दिया है जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अनुसार नौकरी पर लगाए गए थे। अगरचे सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, परंतु दो दिवस से जम्मू कश्मीर में पंडित बरादरी के लोग बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वो इसमें जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दक्षिणी कश्मीर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को भी गोली मारकर हताहत कर दिया। इस तरह 48 घंटे के समय काल के दौरान दो व्यक्ति अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों हताहत हुए। जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने इन घटनाओं का खंडन किया और कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
देखिए जहां तक इन किलिंग्स का सवाल है, वायलेंस का सवाल है, ये जहां भी हो, जिस सूरत में हो, ये हमेशा कंडेमनेबल है। वायलेंस को सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। कल एक हिंदू भाई, उसको मारा गया, जवान था, अपनी फैमिली का वाहिद सहारा था, सहारा छीन लिया। क्या हासिल है इससे, क्या हासिल होगा इससे? آج سہارا ریاض میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کے پیرنٹس کیسے ماتم منا رہے تھے, اس کے ہمسایہ گاں کیا کر رہے تھے, کیا ملے گا, کیا ہو جائے گا اس سے, کتنی بیوائی ہونی چاہیے, کتنے ماؤں کے بچے جائیں گے. میں یہ کہوں گا یہ طریقہ وائلنس کا اچھا نہیں ہے, یہ سوسائٹی کے لیے اچھے نہیں ہے, یہ ایسے طور طریقے کنڈیمنیبل ہیں, چاہے یہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے یہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو.
اس بیچ جموں کشمیر کے جتنے بھی دھارمک دل ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی بے گناہ ویکتی کو ہتاد کرنا صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان گھٹناؤں کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ انہیں کون لوگ ہتاد کر رہے ہیں. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کاریکرم سماپت ہوتا ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروتاؤ, اب پرستت ہے ساپتاہک کاریکرم ایران بھرمڑ, جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا انتم کاریکرم اجول بھوشیہ. ایران بھرمڑ.
دوستو, کارکرم ایران بھرمڑ کے ایک انکڑ کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. آج ہم ایران کے ایک شہر عراق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے.
دوستو, ایران کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام عراق ہے. یہ نگر دیش کے مرکزی پرانت میں استھت ہے. عراق شہر کا چھیتر پھل 7,000 وگ کلومیٹر ہے. یہ نگر سمندر کی سطح سے 1,800 میٹر کی اونچائی پر مرکزی پرانت کے کیندر میں استھت ہے. عراق شہر کی استھاپنا سن 1812 میں فتح علی شاہ قاجار کے کال میں چھاونی کے روپ میں ہوئی تھی. اس میں اس کا نام سلطان آباد رکھا گیا تھا. اس کو چھاونی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہاں پر ایرانی سینا ٹھہر سکے.
بعد میں شہر کی چمک دمک بڑھتی گئی. وبھن ویوسائے کے لوگ ایوم ویاپاری اس اور آکرشت ہونے لگے. بعد میں وکاس کے کارن اس کی استھتی یہ ہو گئی کہ اس کو ایران کے مہتوپورن شہروں میں گنا جانے لگا. اب اس شہر میں انیک دیشی ایوم ودیشی کمپنیاں ویاپار کرتی ہیں. 1316 ہجری شمسی میں اس شہر کا نام پریورتت ہو کر عراق ہو گیا. جلوایو کی درشٹی سے عراق ایران کے کیندریہ پٹھاری علاقوں کی ہی بھاتی ہے. یہاں پر شیت ریتو ادھک ٹھنڈی, نم ایوم لمبی ہوتی ہے, جبکہ گریشم ریتو چھوٹی, ششک ایوم گرم ہوتی ہے.
الیکھنی ہے کہ عراق نگر کے آس پاس میدانی علاقوں, پروتوں اور مقان جھیل نے اس علاقے کی جلوائے کو پرہوت کیا ہے. ان چیزوں نے عراق نگر کو ایک وشیش پرکار کی وشیشتا پردان کی ہے. یدیپی عراق ایک ششک اور کم بارش والا علاقہ ہے, لیکن یہاں پر جو بارش ہوتی ہے اس کا ادھکانش بھاگ برفباری کے روپ میں ہوتا ہے. یہاں پر گرنے والی برف پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر باقی رہتی ہے, جو بسنت کے موسم میں پگھلنا شروع ہوتی ہے. گرمی کے موسم میں یہاں کی برف پگھلنے کے کارن یہاں پر جھرنے اور وبھن نہریں استتو میں آ جاتی ہیں.
دوستو, عراق کے پراچین بازار کو اس نگر کے آکرشک کیندروں میں گنا جاتا ہے. ورشوں گزر جانے کے بعد آج بھی اس کا آکرشن باقی ہے. چھتدار یہ بازار دینک آوشکتاؤں کے خریداری کے لیے نگر کا سب سے اچت استھل ہے. ایتہاسک عراق بازار سمو کا کھیتر پھل 14 ہیکٹر ہے. یہ 13ویں ہجری قمری شتابدی کے پرارمبک دور کی واستوکلا کا مولیوان ادھارن ہے کہ جسے ایران میں نگر نرمان کے پورک کے روپ میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سموہ میں کہ جو شہر کے پرتھم نرمانوں میں سے ہے، ویاپار، آواس ایوم سیوا بھاگ ہیں کہ جس میں مسجد، اسنان گھر، اسکول، مسافر خانہ اور پانی کا بھنڈار ہے۔ اس بازار کی عمارت دو پنکتیوں میں بنی ہوئی ہے، ایک 720 میٹر لمبی دکشن پوروی پنکتی اور دو پرویش دوار، ایک پورب میں اور ایک دکشن میں، اور دوسری پنکتی پشچمی پوروی کی جس کی لمبائی 200 میٹر ہے اور 8 دوار پشچمی پوروی ہیں۔ ان دواروں کا پریوگ سامانیتہ آپاتکال استھتی میں ہوتا ہے۔
دکشن پوروی عمارت اور پوروی پشچمی عمارت 400 نمک پرتی استھان پر ایک دوسرے کو کاٹ کر نکلتی ہیں، اور اس استھان پر ایک پکا خوز بھی ہے۔ عراق کے بازار نے شہر کے ویاپاری کیندر کے روپ میں استھانیہ نواسیوں کے لیے مہتوپورن آرتھک بھومیکا نبھائی ہے۔ اس بازار میں بھی ایران کے دوسرے بازاروں کی بھانتی وبھن ویاپاری گتیویدھیوں کے لیے وبھن استھان وشیش ہیں۔ اس بازار میں مکھیہ روپ سے قالین اور اسے سمبندھت آوشک سامگری کا ویاپار ہوتا ہے۔ عراق کے بازار کے نرمان میں واستو کلا کا ایک مول سدھانت کا پریوگ بہت ہی اچت ڈھنگ سے کیا گیا ہے۔ یہی کارن ہے کہ اس میں پرکاش آنے اور وینٹیلیشن کا اچت دھیان رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسافر خانوں کے ڈیزائن میں اینٹوں اور لکڑیوں کے پریوگ سے سندرتا کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔
بازار کی چھت گنبد کے روپ میں ہے، ہر گنبد کے کیندر میں بہو کونیا روشن دان بنائے گئے ہیں جو عمارت میں پرکاش پہنچانے کے علاوہ ہوا کے پریورتن کا بھی کام کرتے ہیں۔ عراق کے بازار کے نرمان میں وشیش واستو کلا کے پریوگ کے کارن سردیوں میں بھیتر کا واتاورن گرم اور گرمیوں میں یہ کافی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس بازار کے ایک استھان کو مرکزی پرانت کے ہست کلا وستوں کے لیے وشیش کیا گیا ہے جو ایک پرانے ایوم ایتیہاسک حسن پور نامک گھر میں استھت ہے۔ عراق کے بازار کو 1976 میں ایران کی راشٹریہ دھروہر کے روپ میں پنجکرت کیا گیا ہے۔
عراق کے اس مشہور بازار کے نکٹ سپہ دار مدرسہ استھت ہے۔ یہ مدرسہ قاجار شاسن کال کی ایتیہاسک دھروہروں میں سے ایک ہے، جس کا نرمان بازار کے ساتھ ساتھ کیا گیا تھا، جو ورتمان سمے میں عراق کا پرتھم دھارمک شکشا کیندر ہے۔ اس مدرسے میں کافی سنکھیا میں دھارمک چھاتر دھرم شاستر کے علاوہ ان اسلامی وشیوں کی شکشا گرہن کرتے ہیں۔ مدرسے کی عمارت کی شیلی کافی حد تک صفوی کال کے مدرسوں سے پریرت ہے۔ اس مدرسے میں ایک مسجد، جل بھنڈار اور ان سویدھائیں ہیں۔ اس عمارت میں دو دوار ہیں، جن میں سے ایک بازار کی اور کھلتا ہے۔ اس میں ایک بڑا آنگن ہے جس کے بیچ میں ایک پکا حوض بنا ہوا ہے۔ سپہ داری مدرسے میں اینٹوں کا بنا ہوا بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر اونچے اس گنبد کو نگر کے ہر چھت سے سرلتا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مدرسے کی عمارت کا باہری حصہ بہت ہی سادہ ہے، جبکہ اس کے بھیتری بھاگ میں ٹائلز کا پریوگ کیا گیا ہے۔ اس کے بھیتر کئی شیلالیکھ ٹنگے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے پرانگن میں چاروں اور 25 کمرے بنے ہوئے ہیں، جن کے دروازے باہر کی اور کھلتے ہیں۔ کمروں کے آگے ایک برآمدہ ہے، جبکہ ان کے پچھلے حصوں میں بیٹھنے کے لیے چبوترے بنائے گئے ہیں۔ عراق کے پریٹن آکرشنوں میں سے ایک ہست شلپ کا سنگرہالیہ ہے۔ یہ سنگرہالیہ نگر کے پراچین چھیتروں میں بنا ہوا ہے، جو یہاں کے پراچین بازار کے نکٹ ہے۔ یہ سنگرہالیہ حسن پور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس کو احمد شاہ قاجار کے کال میں بنایا گیا تھا۔ آرمبھ میں یہ عمارت قالین بیچنے کا کیندر تھی، جس کو بعد میں مدرسہ بنا دیا گیا۔ کچھ سمے کے بعد جواد حسن پور نے اس کو اپنے آواس میں پرورتت کر دیا۔ سن 2002 میں ایران کے سانسکرتک دھروہر وبھاگ نے اس کو خرید کر اس کی مرمت کروائی۔ بعد میں اس عمارت کو عراق کے سنگرہالیہ کے روپ میں گھوشت کیا گیا۔ इस संग्रहालय में लोगों को देखने के लिए वस्तुओं को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है।
अराक की ऐतिहासिक इमारतों में से एक हाज वकील किला है, जो कि कुलाए फरंगी नाम की इमारत से भी जानी जाती है। सन 1996 में इसको देश की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पंजीकृत किया गया। ये इमारत 900 वर्ग मीटर की है। इसका पूरा क्षेत्रफल 3800 वर्ग मीटर है। ये इमारत पूरे परिसर का एक छोटा सा भाग है, जिसमें हॉल, कमरे और दूसरे अन्य भाग बने हुए हैं। इस इमारत को नासिरुद्दीन शाह के काल में बनाया गया था। इसको बाद में मोहम्मद हसन वकील ने खरीदा था, जो बाद में उन्हीं के नाम से मशहूर हो गई। इसमें लगी हुई 7 रंग की टाइलों का भी उल्लेख किया गया है।
दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान का केंद्रीय प्रांत और विशेषकर इसका अराक नगर वो जगह है जहाँ पर ईरान के बहुत से जाने माने लोग पैदा हुए हैं। ये लोग वे थे जिन्होंने धर्म, राजनीति, इतिहास, सामाजिक कार्यों, तत्व दर्शिता, दर्शन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। इन ख्याति प्राप्त लोगों में मिर्जा मोहम्मद तकी खान, अमीर कबीर, मिर्जा अबुल कासिम फरहानी, आका नूरुद्दीन इराकी, आका जियाउद्दीन इराकी, हाज आका मोहसिन इराकी, करबलाई कासिम सारुकी, अली अकबर खान फरहानी, आयतुल्ला मोहम्मद अली अराकी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी फलादुंद, डॉक्टर नैसानियान, डॉक्टर मोहम्मद खजाली आदि की ओर संकेत किया जा सकता है। दोस्तों, हम अराक के महान लोगों से संबंधित संग्रहालय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।
ये इमारत हाज हुसैन खाकबार मोहसिनी अराकी नामक बिल्डिंग में स्थित है। काजारी शासन काल में इस इमारत को सैयद हुसैन खाकबास के एक पुत्र हाज मोहसिन अराकी ने बनवाई थी। इसको 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। इसके दो सिरों पर पूर्वी और पश्चिमी नामक दो हॉल बने हुए हैं। इसके भीतर 11 कमरे बने हुए हैं। इमारत के भीतर एक प्राचीन विशेष स्नान गृह भी मौजूद है। अराक में एक मशहूर चर्च भी है, जिसको मसरूप मुकद्दस किलीसा के नाम से जाना जाता है। इसको अराक नगर के प्रमुख आकर्षणों में से एक के रूप में जानते हैं।
इस गिरजाघर को सन 1914 में काजार काल के दौरान अराक नगर में रहने वाले ईसाइयों की मदद से बनवाया गया था। इसको ईरान की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सन 2000 में पंजीकृत किया जा चुका है। ये एक आयताकार इमारत है। इस इमारत में हवा और रोशनी के लिए चारों ओर रोशनदान बनाए गए हैं। गिरजाघर की बड़ी घड़ी इसके पश्चिमी प्रवेश द्वार के सामने लगी हुई है। मसरूप मुकद्दस किलीसा नामक गिरजाघर के दो प्रवेश द्वार हैं। इसका एक प्रवेश द्वार दक्षिणी भाग में जबकि दूसरा पश्चिमी भाग में स्थित है। इस चर्च के भीतर स्कूल, पादरी का घर और चौकीदार का घर मौजूद है, जो गिरजाघर के प्रांगण में बने हुए हैं। इस गिरजाघर के भीतर ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान शहीद होने वाले ईरानियों की याद में एक बोर्ड लगाया गया है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। उज्जवल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और सैयद। मैं शाम का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद देश में बुनियादी ढांचे और नवीनतम तकनीकी विकास की चर्चा करेंगे।
ईरान की इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों के बारे में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान के दुश्मनों ने इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान की छवि खराब करने का बहुत प्रयास किया है। पिछले कार्यक्रम में हमने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इस्लामी गणतंत्र ईरान में विकास और प्रगति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया वर्षों में इस्लामी गणतंत्र ईरान ने कुछ नई तकनीकों में आश्चर्यजनक प्रगति की है। समाज के शिक्षा स्तर में सुधार, साक्षरता दर में वृद्धि, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक केंद्रों का विस्तार और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में छात्रों की संख्या में वृद्धि, अध्ययन पर आधारित लेखों की संख्या में शीर्ष रैंकिंग, पेटेंट और नैनो टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग, परमाणु तकनीक में प्रगति, अंतरिक्ष की तकनीक में विकास और स्टेम सेल सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति को इस्लामी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां माना जा सकता है।
इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में एक बड़ी छलांग लगाई है। विज्ञान के क्षेत्र में ईरान विश्व में 15वें और क्षेत्र में पहले स्थान पर है। ISI वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक विज्ञान के क्षेत्र में ईरान की विकास दर सबसे ज्यादा है और यह वैज्ञानिक उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो लगभग 2 दशक पहले तक ईरान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में बिल्कुल नई चीज थे, अब गतिविधियों के विस्तार, रोजगार सृजन और नॉलेज बेस्ड रोजगार में वृद्धि और धन प्राप्ति में सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। आज करीब 1100 नॉलेज बेस्ड कंपनियां नॉलेज पार्कों और केंद्रों में स्थित है। 20 वर्षीय योजना के मुताबिक 2025 तक ईरान की एक विकसित देश के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर होगी और इसका वैज्ञानिक स्थान और तकनीकी स्थिति इस्लामी और क्रांतिकारी पहचान के साथ इस्लामी दुनिया में प्रेरक और रचनात्मक और प्रभावी होगी।
ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के पहले 10 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाए गए और सभी प्रयासों का आधार ये था कि वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और नियोजित विकास का एक मॉडल प्रदान किया जाए। आज नैनो टेक्नोलॉजी औद्योगिक क्रांति की चौथी लहर और सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों में एक महान घटना के रूप में उभरी है। ये ऐसी नई प्रौद्योगिकियों में से एक है जो तेजी से विकसित हो रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और सूचना व संपर्क तकनीक 3 ऐसे वैज्ञानिक क्षेत्र हैं जो तीसरी प्रौद्योगिकी क्रांति का सूत्रधार हैं। वहीं वर्तमान ज्ञान या नैनो तकनीक को नए व अप टू डेट डिजाइन के आधार पर होना चाहिए।
ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों में से 160 सक्रिय नैनो कंपनियां द्वारा नैनो घरेलू उत्पादन, नैनो कारें, नैनो कपड़े, मेकअप और स्वास्थ्य सामग्री, कृषि उत्पादों, निर्माण कार्यों और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का नाम लिया जा सकता है। देश में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित 370 उत्पाद हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में परमाणु स्तर पर कणों को नियंत्रित करने के लिए उनका अध्ययन किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के अधिकांश अनुसंधान केंद्रों का मुख्य लक्ष्य नई मौजूदा सामग्रियों में परिवर्तन करना और उन्हें नया रूप देना है।
नैनो टेक्नोलॉजी उन कुछ तकनीकों में से एक है जो इस्लामी क्रांति से पहले दुनिया में मौजूद तक नहीं थी। यहाँ ये बिंदु उल्लेखनीय है कि दुनिया में इस तकनीक के आने के बाद ईरान ने भी सही समय पर इसमें कदम रखा और आज प्रगति करते हुए दुनिया में छठे पायदान पर है। नैनो टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बड़ा बदलाव किया है और ईरान में इस तकनीक का काफी महत्व है। दवा उत्पादन और उसके संरक्षण, बीमारियों की पहचान, पानी को प्रदूषण रहित करने, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादों और खाद्य सामग्रियों का संरक्षण और भंडारण, कीट नियंत्रण और वायु स्वच्छता जैसी उपलब्धियों का नतीजा भविष्य में लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा।
वर्तमान में ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित 370 वस्तुओं का उत्पादन किया जा चुका है। ईरान के नैनो उत्पाद 15 देशों को निर्यात किए जाते हैं। यह देश नैनो टेक्नोलॉजी में प्रगति की दृष्टि से चीन, अमेरिका और भारत के बाद चौथे स्थान पर और समस्त यूरोपीय देशों से आगे है। नैनो टेक्नोलॉजी में ईरान की वैश्विक स्थिति का आकलन 3 प्रमुख मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जो इस प्रकार से है: लेखों की मात्रा, लेखों की गुणवत्ता और नैनो प्रौद्योगिकी आविष्कारों की संख्या। 2019 में ईरानी शोधकर्ताओं ने नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित 11,096 लेख प्रकाशित किए, जिसे WSO ने अनुमोदित किया। इतने बड़े पैमाने पर लेखों के प्रकाशन से ईरान दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया। 2018 में प्रति व्यक्ति नैनो लेखों के मामले में ईरान 14वें स्थान पर था, जबकि 2017 में मौद्रिक शक्ति दर के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर था। ईरानी विश्वविद्यालयों में तेहरान विश्वविद्यालय में 930 नैनो लेख प्रकाशित हुए हैं। इस तरह ईरान में प्रकाशित होने वाले कुल नैनो लेखों का यह 8.3% हुआ है। इसके साथ तेहरान विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः तरबियत मुदर्रिस विश्वविद्यालय, अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इस्फहान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और शरीफ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का स्थान आता है।
ईरान में दीर्घकालिक योजना के तहत नैनो टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे का विस्तार है और इसके लिए स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ओलंपियाड उन प्रतियोगिताओं में से एक है जो छात्रों के लिए आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता और नैनो प्रौद्योगिकी स्टार्टअप प्रतियोगिता भी नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में से है। नैनो स्टार्टअप प्रोग्राम नैनो टेक्नोलॉजी एजुकेशन फाउंडेशन की अंतिम कड़ी है। नैनो टेक्नोलॉजी एजुकेशन साइट पर प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी करने और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद छात्रों को अंततः कार्यक्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। नैनो स्टार्टअप का मुख्य लक्ष्य बाजार की जरूरतों के आधार पर एक कार्यक्रम को विकसित करना और इसमें भाग लेने वाली टीमों को इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करना है।
ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास 2 दशक पुराना है। इस दौरान हम मानव श्रम बल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे जा सकते हैं, जो विज्ञान और तकनीक के बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। किसी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुशल और विशिष्ट श्रम बल का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में 35,000 से अधिक छात्र और विद्वान हैं। इसके अलावा ईरानी विश्वविद्यालयों में लगभग 2500 फैकल्टी, टीचर और प्रशिक्षक शोध और अनुसंधान में सक्रिय हैं। ईरान के 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में मास्टर की डिग्री प्रदान की जाती है। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित डॉक्टरेट के लगभग 10 कोर्स हैं।
शिक्षा मंत्रालय के तहत नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों जैसे कि नैनो केमिस्ट्री, नैनो फिजिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो कंप्यूटिंग और नैनो मटेरियल्स में 20 से ज्यादा विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों को ध्यान में रखते हुए नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में काफी संख्या में शोध प्रबंध और डॉक्टरेट शोध प्रबंध प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब तक ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों और स्तरों में 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर चुके हैं। वर्तमान में ईरान में 220 से छोटी बड़ी कंपनियां नैनो के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान नैनो क्षेत्र से संबंधित वित्तीय लेनदेन में 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान अमेरिका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों के बावजूद नैनो के क्षेत्र में ईरान का निर्यात 2 गुना हुआ है, जो इस क्षेत्र में ईरान की मजबूती को दर्शाता है। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.